नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल पुथल शिंदे के अप्रत्याशित सीएम बनने के बाद अब थम चुकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी और शिवसेना की तनातनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है कि ईडी का डर दिखाकर विधायकों को बगावत के लिए मजबूर किया गया। बता दें कि आज शिवसेना नेता संजय राउत ईडी के बुलाने पर चौल जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने जा रहे हैं। पूछताछ से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं आज दोपहर 12 बजे ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूं। मैं जारी किए गए समन का सम्मान करता हूं और जांच एजेंसी का सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। मैं सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो ईडी दफ्तर के बाहर जमा ना हो, मेरी चिंता ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने संजय राउत को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राउत पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि इस सियासी संकट के बीच मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा, मैं पूछताछ के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। राउत ने ईडी से वक्त मांगा था, जिसके बाद ईडी ने फिर नया नोटिस जारी कर उन्हें 1 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र में तख्ता पलट के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सत्ता से हट गया और उसकी जगह शिंदे भाजपा गठबंधन ने ले ली। एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। इसी मुद्दे पर एक टीवी चैनल पर चल रही डिबेट में जब कांग्रेस नेता ने एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर घेरा, तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी दमदार जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये पार्टी एक दिन दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। गौरव भाटिया ने शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 45 सीटें आईं और शिवसेना के साथ सरकार बना ली, उस शिवसेना के साथ जिसे बनाने वाले बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि चाहे दुकान बंद हो जाए लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ा और सरकार बना ली शिवसेना के साथ, जो बीजेपी के साथ थी, और उस पार्टी ने मोदी जी का पोस्टर लगाकर चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि तीसरा, कांग्रेस पार्टी नैतिकता की बात करती है और राजस्थान में बसपा के 6 विधायक मर्ज करा दिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि वो क्या था, लूट तंत्र या रुपए की ताकत। उन्होंने आगे कहा, मैं इतना ही कहूंगा कि नैतिकता और विचारधारा का दिवालियापन हो रखा है, गायब हो रहे हैं। एक दिन आप दूरबीन से ढूंढेंगे और कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी। इसकी वजह क्या है, हिंदुत्व को गाली देते हो, इसीलिए हिंदुत्व की ताकत का पता चला है। 40 बागी विधायकों के साथ सूरत, फिर गुवाहाटी और फिर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही बारीकी से काम किया। यहां तक कि इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी फडणवीस को भी अंतिम क्षणों तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यही कारण है कि गुरुवार को मुंबई में घटनाओं का असामान्य क्रम, पहला फडणवीस की आश्चर्यजनक घोषणा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और फडणवीस इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, वो बाहर से समर्थन करेंगे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सार्वजनिक बयान आता है कि फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम होंगे और बीजेपी भी सरकार का हिस्सा होगी। नड्डा के इस बयान का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी समर्थन किया। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे को लूप में रखा था। योजना और अनुशासन पर सख्त जोर देने वाली पार्टी बीजेपी में भ्रम के इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन को नहीं जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने महसूस किया कि एक मजबूत बीजेपी नेता के पास न केवल बेहतर नीति निर्माण निश्चित करने, नौकरशाही पर पकड़ बनाए रखने और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, बल्कि एक स्थिर सरकार भी प्रदान करना है। 1 जुलाई से पूरे देश में नए लेबर कोड लागू किए जा सकते हैं, जो आपके वेतन, साप्ताहिक अवकाश और दैनिक काम के घंटों को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्र ने इन चारों कोड को अंतिम रूप दे दिया है, अब इसे लागू करना राज्यों पर निर्भर है। ये कोड मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित हैं। यहाँ नए श्रम संहिता 2022 के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। नए श्रम संहिता के तहत कर्मचारियों को 3 सप्ताह की छुट्टी की अनुमति होगी। किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना होगा, यानी जो कर्मचारी रोजाना 8 घंटे काम करेंगे उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। हालांकि जो लोग प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं उन्हें 3 सप्ताह की छुट्टी का अधिकार होगा। प्रतिदिन 9 घंटे काम करने वालों को 2 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। नए श्रम कोड पूर्ण और अंतिम नियमों को भी बदल देंगे। जो लोग नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं उन्हें कंपनी से बाहर निकलने के लिए 2 दिनों के भीतर अंतिम निपटान राशि का भुगतान करना होगा। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाएगा। उनकी मर्जी के बिना कोई भी कंपनी उन्हें नाइट शिफ्ट में नहीं रख सकती है। उचित सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होंगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।